संबंध, कामना स्प्रिहा ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण माने शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में हो जाती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यह ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार पदों का लक्ष्य कराता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति भी प्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई, यह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में चार प्रश्न किए थे। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहां वह स्थिति बताई है कि ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता, यह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहां पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्वा स्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण माने शांत, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बात भगवान ने सातवें अध्याय के तीसवें श्लोक में भी कही है कि अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ एक भगवान ही है, ऐसा प्रयाण काल में भी मुझे जो जान लेते हैं वे मुझे यथार्थ रूप से जान लेते हैं, वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उसी ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे संबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान मान भय से रक्षा कर लेता है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, ऐसे ही यहां कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वो अंतकाल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा, परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती, ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है, यह स्थिति तत्काल होती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्मयोग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, पांचवें अध्याय के 24वें से 26वें श्लोक तक, ऐसे ही कर्मयोगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को पांचवें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। पहला, अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह। दूसरा, सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना, यह अहंता ममता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, ये कामना युक्त मोह है। शरीरी अलग है और शरीर अलग है, शरीरी सत है और शरीर असत है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है, और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे, ये अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारा पितरों का पतन न हो, ये कामना युक्त मोह हुआ। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है, शरीर शरीरी सत असत का विवेक, जो दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें तक बताया, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक दूसरे अध्याय के 31वें से 53वें श्लोक तक बताया। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। अर्थात हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे मनुष्य में कुमार युवा और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बदलती है, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये तो आकाशीय नियम है, इसमें चिंता की शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है, तो युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो, इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को अर्थात श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, शरीर को मैं और मेरा कह लेने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है, अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होगा। 4:35 अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसे तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति माने तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। 3:27 जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7:5 यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है।